శంభవాయ చ మయోభవాయ చ నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ. యజుర్వేద్ కా యే మంత్ర హై, వో ఈశ్వర్ జో సుఖ దేనే వాలా హై, శాంతి దేనే వాలా హై, మంగళమయ హై, ఔర్ జో సబ్సే బడే మంగళమయ హై. ఆజ్ హమ్ దో దో ఫెస్టివల్స్ సెలిబ్రేట్ కర్ రహే హై. 28 తారీఖ్ కో ఫాల్గున్ కృష్ణ దశమీ, ఫాల్గున్ మాస్ కే దశమీ మే స్వామి దయానంద్ జీ కీ జయంతి హై, జో అంగ్రేజీ క్యాలెండర్ కే హిసాబ్ సే 1825 12 ఫిబ్రవరి కో, ఔర్ భారతీయ తిథి కే అనుసార్ ఫాల్గున్ మాస్ కే కృష్ణ పక్ష దశమీ తిథి జో కి 28 ఫిబ్రవరి కో థా, ఉన్కి జయంతి హై. ఔర్ 4 మార్చ్ కో కల్ కుచ్ జగహ పర్సో శివరాత్రి సెలిబ్రేట్ కర్ రహే హై. దోనో కే బారే మే థోడీ థోడీ చర్చా కరేంగే. దోనో హీ బడే మహత్వపూర్ణ పర్వ హై. సబ్సె పహలే స్వామి దయానంద్ జీ కీ చర్చా కర్తే. స్వామి జీ కరీబ్ కరీబ్ 24-25 సాల్ తక్ హిమాలయ సె లేకర్ వింధ్య పర్వత్ తక్, మతలబ్ సెంట్రల్ ఇండియా తక్ 20-25 సాల్ తక్ భ్రమణ కర్కే ఖోజ్ మే సహీ జ్ఞాన్ కే సహీ గురు కే ఖోజ్ మే బితాకర్ జో కుచ్ భారత్ కీ దశా కో దేఖా, జో రియలిటీ కో జానా, శాస్త్రో కో పఢా, హజారో లాఖో గురువో సే సిఖా, ఔర్ ప్రాక్టికలీ సొసైటీ మే లోగో కే జీవన్ కో దేఖా, ఉన్కే దుఃఖ సమస్యాయో కో దేఖా, ఔర్ ఉస్కా జడ్ ఉస్కా సోర్స్ కో సమ్ఝా. ఉస్కే బాద్ జో ఉన్హోనే మూమెంట్ చలాయా, వో మూమెంట్ థా కి బ్యాక్ టు ద వేదాజ్. జనరలీ లోగో కే లైఫ్ మే జో అంధేరా హోతా హై, జో దుఃఖ యా మిజరీ హోతీ హై, ఉస్కా బహుత్ బడా కారణ హోతా హై హమారా బిలీఫ్ సిస్టమ్. వో బిలీఫ్ సిస్టమ్ పొలిటికల్ హో, రిలీజియస్ హో, ఇకోనామికల్ హో, కైసా భీ హో, జబ్ తక్ హమారా వో బిలీఫ్ సిస్టమ్ మే చేంజెస్ నహీ ఆతా హై, లైఫ్ మే కభీ చేంజెస్ నహీ ఆయేగా. జైసే ఆప్కో ఛోటా ఎగ్జాంపుల్ దేతే హై, భారత్ సర్కార్ నే WHO కే సాథ్ కోఆర్డినేట్ కర్కే ఏక్ మూమెంట్ చలాయా, పోలియో కో హటానే కా మూమెంట్, ఔర్ జో కి టార్గెట్ థా 15-20 సాల్ కే అందర్ పూరే భారత్ కో పోలియో ఫ్రీ కర్ దేంగే, ఔర్ హువా భీ కమోవశ్, పర్ వో 15-20 సాల్ కే జగహ 30-40 సాల్ లగే, ఔర్ ఆజ్ భీ బహుత్ సారే ఏరియా మే పోలియో ముక్త్ నహీ హో పా రహా హై, క్యోంకి కుచ్ క్షేత్ర కే కుచ్ లోగో కో ఐసే బతాయా గయా, మనవాయా గయా, వో మాన్తే హై కి పోలియో ఇంజెక్షన్ కే థ్రో సర్కార్ హమే హమారే వో పరివార్ నియంత్రణ కర్ రహా హై, బచ్చే పైదా కర్నే కీ శక్తి కమ్ హో జాయేగీ, ఏక్ పర్టికులర్ రిలీజియస్ బ్యాక్గ్రాఉండ్ మే లోగో కో ఉన్కే ప్రీస్ట్ నే సిఖాయా. ఉస్కా రిజల్ట్ క్యా హువా, కుచ్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ మే బాకీ పూరే దేశ్ మే సే పోలియో నికల్ గయా, పర్ ఉస్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ మే ఆజ్ భీ హజారో బచ్చే పోలియో వాలే పైదా హోతే హై, క్యోంకి వో ఏక్ పర్టికులర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ కే సాథ్ జుడే హువే హై, జబ్కి ఏక్ మెడికల్ ఇష్యూ హై, ఇస్కా రిలీజియస్ రిలీజియన్ సే కోయి లేన్ దేన్ నహీ, పర్ వో బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉన్కో మజబూర్ కర్తా హై కి ఉన్కే బచ్చే పోలియో హోకర్ కే జ్యాదా తర పైదా హోతే హై. దట్స్ ఇట్. యే ఛోటా ఎగ్జాంపుల్ దియా కైసే హమారే బిలీఫ్ సిస్టమ్ హమారే ఓవరాల్ వో పొలిటికల్ హో, ఇకోనామికల్ హో, స్పిరిచువల్ హో, రిలీజియస్ హో, సోషల్ లైఫ్ కో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కర్తా హై. అగర్ కోయి యే మాన్ కే ఇస్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ కే సాథ్ చలే యా చలే ఉస్కో చలాయా జాయే కి తుమే కుచ్ కర్నే కీ జరూరత్ నహీ, ఈశ్వర్ పర్ భరోసా రఖో, సబ్ కుచ్ హో జాయేగా, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, हरि पर भरोसा रखो, सब हो जाएगा। होगा क्या, गरीबी और अनपढ़ के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। बट दैट्स अ बिलीफ सिस्टम। क्या मानते हो अगर आप भगवान पर भरोसा करते हो आपको काम करने की जरूरत नहीं, सब भगवान कर देगा। इस बिलीफ सिस्टम के कारण भी गरीबी बढ़ती है, अनपढ़पन बढ़ता है, बहुत सारी चीजें बढ़ता है। ये हम भी फील करते हैं, लाखों करोड़ों पॉलिटिकल लीडर सोशल रिफॉर्मर भी फील करते हैं। पर स्वामी जी ने जो देखा, स्वामी दयानंद जी ने जो उनका कंक्लूजन था कि जब तक लोगों के इस माइंड को चेंज ना किया जाए, रिलीजियसली उनको एजुकेटेड ना किया जाए, तब तक उनके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम उनके ओवरऑल लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। इसीलिए जो देखा उन्होंने कहा कि ये जो धर्म के नाम पर, बिलीफ सिस्टम के नाम पर, फेथ के नाम पर आज भी 21st सेंचुरी में हम देखते हैं, सिर्फ फेथ और बिलीफ सिस्टम और रिलीजन के नाम पर कैसे लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग मारते हैं, किस तरह की आपकी इकोनॉमी बिलीफ सिस्टम के बेस पर बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं, आज भी होता है, कैसे आपकी इकोसिस्टम जो ग्लोबल वार्मिंग हो या जो भी हो वो एक बिलीफ सिस्टम के थ्रू रन करता है। एक बिलीफ सिस्टम है कि देयर इज नथिंग लाइक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, नथिंग, फॉल्स है। एक सिस्टम है वो मानता है कि नहीं, दुनिया में ये चेंजेस आ रहे हैं, वी हैव टू डू समथिंग। ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप क्या मानते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी, और जो सोसाइटी मानता है तो सोसाइटी की पर्सनैलिटी चेंज होता है। तो स्वामी जी ने जो आह्वान दिया, गो बैक टू योर ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स, ओरिजिनल थिंग, वेद, वैदिक लिटरेचर, उनको जानो, देखो वो कितने एडवांस्ड हैं, कितने लिबरल हैं, कितने ह्यूमैनिटेरियन है, कितने स्पिरिचुअल है, कितने ब्रॉड माइंडेड है, और जिनको तुम धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, फेथ के नाम पर मानते हो, वो सिर्फ तुम्हारे इग्नोरेंस के कारण है, तुम्हारे सिखाने वाले रिलीजियस लीडरों के एजेंडा, सेल्फ ग्लोरीफाइंग एजेंडा और इग्नोरेंस के कारण है। अगर तुम अपनी चीजों को पढ़ोगे, जानोगे, एजुकेटेड बनोगे तो तुम्हारे लाइफ में चेंजेस आएगा। तो स्वामी जी का फोकस सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन नहीं था, ओवरऑल एजुकेशन। आप एजुकेटेड बनो, एजुकेटेड प्रोफेशनली भी बनो, एजुकेटेड रिलीजियसली भी बनो, एजुकेटेड स्पिरिचुअली भी बनो। विदाउट गेटिंग नॉलेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इग्नोरेंस सिर्फ एक अभिशाप हो सकता है और कुछ नहीं। इसीलिए स्वामी जी का जो ओवरऑल था कि आप लोग गो बैक टू योर ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स। अब जिस चीजों के खिलाफ उन्होंने पहली बार आवाज उठाई, मोस्ट ऑफ रिलीजियस लीडर जिसको अवॉइड करते हैं, आज भी इन चीजों पर बात नहीं करते। आप किसी भी रिलीजियस सेरेमनीज में जाइए, कॉन्ग्रेगेशन में जाइए, वो किसी भी सेक्ट का, रिलीजन का हो, लोग अवॉइड करते हैं। जो आम पब्लिक के अंदर जो बुराइयां हैं उसको एड्रेस करने में, पर स्वामी जी बड़े लाउडली इन बातों को उठाते थे, जिसके कारण उनके शत्रु भी बहुत बने। जो 8-10 चीजों को वो बहुत बुराई मानते थे, उसमें से एक है आइडल वर्शिप, पॉलीथेइज्म, ईश्वर को नाम मानकर ईश्वर के जगह हजारों अलग अलग काल्पनिक, इमेजिनरी, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को ईश्वर मानना, इंसानों को, गुरुओं को भगवान मानना, ये जो ईश्वर को छोड़कर बाकी सबको ईश्वर मानना, ध्यान रखिए, ईश्वर को छोड़कर बाकी सबको ईश्वर मानना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में सब जगह है। और जो सोशल स्टिग्माज हैं, जैसे कास्टिज्म, आज भी हम पढ़े लिखे होकर, इवन परदेश में रहकर भी इस कास्टिज्म के जाल में फंसे हुए हैं, हम समझ नहीं पाते हैं इसे बाहर कैसे निकले। इवन हमारे अपने बच्चे भी हमें टोंट करते हैं, तब भी हम छोड़ने को तैयार नहीं, रास्ता ढूंढ के कहीं ना कहीं हम अपने कास्टिज्म के नेटवर्क में फंसी जाते हैं। अनटचेबिलिटी उन दिनों बहुत ज्यादा था, आज काफी कम हो चुका है। चाइल्ड मैरिज से लेकर बहुविवाह से लेकर फोर्स्ड विडोहुड, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसकी जिस पत्नी का पति जवानी में 15, 18, 20, 22, 25 साल में मर जाता है, उसको जिंदगी भर एक बड़े कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, उसको किसी पापी की तरह रहना पड़ता है, वो कोई कलरफुल चीजें कर नहीं सकता, कोई अच्छा खाना खा नहीं सकता, किसी शुभ कार्य में जा नहीं सकता, जिस ह्यूमिलिएशन के साथ पूरी लाइफ जीना पड़ता है, स्वामी जी ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाया। इसी तरह सती प्रथा आज ऑलमोस्ट चला गया है, डाउरी आज तो बहुत भयानक रूप में आज भी है, इवन पढ़े लिखे लोग, इवन ये एनआरआई लोग उनमें से भी बहुत होते हैं जो चुपचाप बड़े सारे डाउरी लेते हैं इंडिया में शादी करके और लड़कियों के घर वालों की बर्बादी का कारण बनते हैं। इग्नोरेंस टुवर्ड्स आवर ओन स्क्रिप्चर्स रिलीजन व्हाट एवर एंड मोस्टली सुपरस्टिशंस अबाउट एवरीथिंग, इन सब चीजों को स्वामी जी बड़े जोर शोर से लाउडली बोलते थे और उसके खिलाफ बात करते थे, और उनका सल्यूशन किसी फॉरेन आइडिया से नहीं, अपने ही शास्त्रों में, शास्त्रों के थ्रू उसके वो सल्यूशन देने की कोशिश करते थे। उनका मेन टारगेट था कि लोगों को गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स, एजुकेटेड बनो, चीजों को पढ़ो, समझो, खुद जानो। जब तक आप अपने रूट में नहीं जाओगे, जब तक आपने रूट टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ोगे, रूट को नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारे अंदर वो कॉम्प्लेक्स, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। इवन आज भी हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, प्रोफेशनली बहुत आगे बढ़ने के बावजूद भी, सारे दुनिया में घूमने के बावजूद भी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, नॉट ओनली इंडियन, इंडियन ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट के लोगों के अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अभी भी दबा पड़ा है। हम अपने रिलीजन को भी बहुत ज्यादा लाउडली बोलने में डरते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स फील होता है। कोई हमारा फ्रेंड दूसरे रिलीजन का हो, वो अपने प्राउडली बोल सकता है कि मेरा ये रिलीजन है। मोस्ट ऑफ हिंदू लोग अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है। हमारे सबकॉन्शियस में वो आज भी बना हुआ है कि जो एक खास कलर के लोग हमसे ज्यादा बड़े होते हैं, उनकी प्रिविलेज ज्यादा होना चाहिए, हम उनके नीचे आते हैं। हमारे नीचे भी दूसरे लोग आ सकते हैं, दूसरे कलर के लोग, एक पर्टिकुलर कलर के लोग हमसे ज्यादा बड़े होते हैं। हम ऐसा जुबानी माने ना माने, हमारे एक्टिविटीज में, कैरेक्टर में वो दिखता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, यहां बहुत सारे चाइनीज और वियतनामीज, यूरोपियन, अफ्रीकन लोग भी आपको मिलेंगे जो यहां रहते हैं अमेरिका में। हमारे बच्चे जो हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, जो भी इंडिया से अलग अलग भाषा भाषी हैं, वो अपने घर में भी मोस्ट ऑफ फैमिली में अपनी भाषा नहीं बोल पाते हैं। बोलते हैं तो थोड़ी बहुत बोलते हैं, और हमारे पास बहुत सारे उसके कॉजेस, कारण होते हैं। पर हमारे बच्चों के जो फ्रेंड जो चाइनीज हैं, कोरियन हैं, जापानीज हैं, एशिया से आए हैं, उनके बच्चे स्कूल में भी चाइनीज बोल लेते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। मत क्यों, ऐसा नहीं कि उनकी लैंग्वेज बेटर है या नहीं, कुछ नहीं, सिवा सिर्फ यही कि उनके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो इंग्लिश भी बढ़िया बोलते हैं, वो प्योरली अमेरिकन भी है, वो प्योरली चाइनीज भी बोलते हैं, वो अपनी चाइनीज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, बड़े प्राउडली करते हैं। पर हम लोगों के अंदर वो कॉम्प्लेक्स रहता है कि माँ बाप ही थोड़ा हेजिटेट करते हैं अपनी भाषा बच्चा सीखे, इग्नोर करते हैं। तो मेरा मतलब है कि इवन आज भी इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी, इतने पैसा होने के बावजूद भी, इतना रेपुटेशन होने के बाद भी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हमारी चीजों के प्रति हमारा वो कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए स्वामी जी चाहते थे जब तक आप अपनी चीजों को जानोगे नहीं, अपनी रूट को जानोगे नहीं, तब तक तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। स्वामी जी का ये बड़ा जोर होता था कि लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, जो हजारों सालों से लड़कियों की शिक्षा को बंद कर दी गई थी। स्त्री शूद्राभ्याम नाधीयताम, कि स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं, किसी भी शुभ कार्य में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं। और उसका परिणाम हुआ कि लेटर आर्य समाज के ऑर्गेनाइजेशन जो स्वामी जी ने बनाया, मोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गुरुकुलों की, जिसमें लड़कियों के गुरुकुल और जेंट्स बॉयज गुरुकुल, और जो मॉडर्न स्कूल्स हैं लड़कियों के और बॉयज स्कूल की, अलग अलग हजारों बने, जो मोस्ट ऑफ आज वेस्टर्न इंडिया में जो पाकिस्तान में चला गया जो पाठ, और इंडिया में जो पंजाब से लेकर दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तक वो लड़कियों की स्कूल और गुरुकुलों की भरमार बने, तब 19 सेंचुरी के शुरुआत में। इसी तरह स्वामी जी इंडियन जो एजुकेशनल सिस्टम को रिवाइव करना चाहते थे, जहां लड़के और लड़कियों को मॉडर्न एजुकेशन प्रॉपरली मिले और उसके साथ साथ उनको अपने रूट की जानकारी हो। पढ़ने लिखने के बाद आप प्योरली कलर से तो ब्राउन रहे पर आपका सोच व्हाइट हो जाए, ये बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि भारत में रहकर भी, भारतीय होकर भी मोस्ट भारतीय यूरोपियन की तरह सोचते थे। और इस जिसका कारण है कि 70 इयर्स इंडिपेंडेंट के बावजूद भी जो ब्राउन कलर ब्यूरोक्रेसी विथ ए व्हाइट माइंडसेट शासन किया, उनके कारण देश में तरक्की बहुत कम हुई, क्योंकि वो हर चीज जो यूरोप में पॉपुलर है वो उसको इंप्लीमेंट करना चाहते थे भारत में, जो कि बिल्कुल एक इग्नोरेंट कॉपीकैट होता था। हर सोसाइटी की जियोग्राफिकल बैकग्राउंड की एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, उसको बिना जाने अंग्रेजी पढ़े लिखे और अंग्रेजी स्टाइल में सोचने वाले लोगों ने भारत में वो सब कुछ करने की कोशिश की जो यूरोप या ब्रिटेन में होता है, और जिसके कारण हम मोस्ट ऑफ टाइम फेल्ड हुए। जैसे ही धीरे धीरे हमारे गवर्नमेंट्स के अंदर अपने ओरिजिनल रूट की ओर अवेयरनेस आया, हमारे लोगों की यूनिक प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के लिए यूनिक अपने ओरिजिनल थॉट पर जाने लगे, तब इंडिया में चेंजेस आने लगे। ये स्वामी जी की तब से विचार थी कि आप मॉडर्न एजुकेशन के साथ रूट के साथ जोड़ने की जरूरत है। स्वामी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज्य का जो कंसेप्ट है, जो कि वैदिक ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा लाउडली था, उसको गुलाम भारत में जोर से रखने की कोशिश की। और वो जो स्वराज्य, सेल्फ रूलर, सेल्फ इंडिपेंडेंसी का जो स्लोगान था, बाद में बाल गंगाधर तिलक और बाद में जो प्री गांधी जो मूवमेंट में, जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट में जो लीडर्स आए, उन्होंने इसको बड़े जोर शोर से इस बात को रखने की कोशिश की। और उसका परिणाम हुआ आर्य समाज केवल रिलीजियस या स्पिरिचुअल या सोशल रिफॉर्मेशन के लिए काम नहीं करता था। उसके बिलीफ सिस्टम में यह भी था कि देश हमारा अच्छा होना चाहिए, और ये जो नेशनलिज्म का भाव भी आर्य समाज के पार्ट ऑफ उसके कैरेक्टर हुआ करता था स्वामी जी के कारण। उसका परिणाम हुआ कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो शुरुआती दौर में जितने भी क्रांतिकारी हुए, वो अहिंसा फॉलोअर या जो रिवोल्यूशन को फॉलो करने वाले, मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन और वेस्टर्न, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन या वेस्टर्न इंडियन जो भी फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, मोस्टली वो आर्य समाज से या तो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे या इनडायरेक्टली उसे इन्फ्लुएंस थे। उनमें से बड़े बड़े नाम जो आप देख सकते हैं, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम क्यामा, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, सुख यादव, विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल ढिंगरा, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, महादेव रानाडे, स्वामी श्रद्धानंद एक्सेट्रा, ये बहुत दोनों तरफ के थे। उनमें कुछ क्रांतिकारी भी थे जो रिवोल्यूशनरी, जो मेन स्ट्रीम की मूवमेंट में भी जुड़ने वाले, ऐसे आपको हजारों नाम मिलेंगे। और वो जो देशभक्ति या देश को आजाद करने का जो भाव आर्य समाज ने डाला था, वो स्वामी जी की स्वराज्य विचार से इन्फ्लुएंस था। देवियों सज्जनों, स्वामी जी ने इन सब चीजों को उनके बाद कोई रन करे, वो मूवमेंट चला रहे, मिशन चला रहे। इसलिए 1875 में मुंबई में उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा आर्य समाज। नाम भी बड़ा ब्यूटीफुली सोचा हुआ नाम है। आर्य कोई रेस नहीं है, जैसा कि आप लोग रटी रटाई हिस्ट्री को बार बार हम लोग कोट करते हैं या पढ़ते हैं। आज ऑलमोस्ट ये प्रूव्ड है, जो अल्टरनेटिव हिस्ट्री तब माना नहीं जाता था, अब लाउडली प्रूव्ड होता जा रहा है कि आर्यन कोई बाहर से आए हुए रेस नहीं थे। आप लोग अगर स्कूल कॉलेज में पढ़े या गूगल में मिलता है, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। आजकल हजारों बुक्स आ गए हैं जो अपडेटेड वर्जन में। आर्यन बाहर से आए हुए कोई रेस नहीं था, इन्वेडर्स नहीं थे, ये क्वालिटी है। सीताराम को आर्य बुलाते थे, आर्य मतलब सर, ये राम सीता को आर्य बुलाते थे जिसको आप मैडम कहते हैं। गुरु शिष्य गुरु को आर्य बुलाते थे। जो भी हमारे से बड़ा है, एडोरेबल है, प्रोग्रेसिव है, वो सब आर्य होते थे। ये क्वालिटी है, एक नेचर है, उसका रेस के साथ कोई लेन देन नहीं था। इसका ओवरऑल मीनिंग था नोबल पर्संस। आर्य का लिटरेरी मीनिंग है प्रोग्रेसिव, जो आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो प्रोग्रेस करते हैं। नोबल पर्सन वही होता है जो आज अनपढ़ है, कल पढ़ा लिखा होता है, आज कम जानता है, कल ज्यादा जानता है, जो आगे बढ़ता है वही आर्य है, इसीलिए उसको श्रेष्ठ कहते हैं। ये वेद का वाक्य है, कृण्वन्तु विश्वमार्यम्। सारा विश्व को आर्य बनाओ। आर्य का बन का मतलब नहीं कि हिंदू बनाओ, नहीं, श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ, नोबल कैरेक्टर वाला बनाओ। उसी भाव के साथ इस समाज को बनाया कि वो लोग इस समाज में जुड़े जो चाहते हैं कि दुनिया के लोगों को आर्य बनाया जा सकता है या बनाए। और उसका मोटो यही था, कृण्वन्तु विश्वमार्यम्, सारे संसार को नोबल बनाओ, अच्छा बनाओ, प्रोग्रेसिव बनाओ, अपने घर और बाहर वालों को बनाओ। और आर्य समाज की जो ऑब्जेक्टिव भी वही था कि अगेन हमें कोई नई चीज सीखने या जानने से बेटर है या अडॉप्ट करने से कि हम अपने फॉरगॉटन कल्चर को रिवाइव करें, हमारे सो कॉल्ड जो मिडिएवल एज में लिखे गए शास्त्रों को छोड़कर, जो कि काफी सारी बदमाशियां हमारे सोसाइटी में लाने के कारण बने, उनको इग्नोर करो, अपने रियल स्क्रिप्चर वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र धर्म शास्त्र इनको पढ़ो, अपनी चीजों को पढ़ो, जानो, उनको रिवाइव करना, रिकवर करना, अपने फॉरगॉटन वैल्यूज को, अपने फॉरगॉटन कल्चर को जानो, सीखो और एजुकेटेड होकर के उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि हमेशा पास्ट में ही रहो, उस पास्ट को, पास्ट की अच्छाइयों के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ते रहो। यही आर्य समाज का मूल भाव रहा। अगर कभी आपको मन करे कि स्वामी जी के विचार या आर्य समाज के विचार को ठीक से जाना जाए या अपने अंदर अपने आप को अपडेटेड या एजुकेटेड करना है रिलीजन के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, रिवोल्यूशनरी वेजे प्रीजुडिशियस को छोड़ करके, तो आप ये तीन में से कोई एक बुक जरूर पढ़िएगा। स्वामी जी ने मोर देन 20 बुक्स लिखा है, उनमें जो सबसे यूजफुल, जो हम बहुत पॉपुलर और हर किसी को पढ़ना चाहिए, वो है सत्यार्थ प्रकाश। मोस्टली स्वामी जी ने इसको हिंदी में लिखा, वो गुजराती थे, गुजरात में पैदा हुआ था, टंकारा में उनका घर था, तो उनकी हिंदी जब लिखा इतनी अच्छी नहीं थी, और वो मोस्टली अपने सारे शास्त्रों का एक तरह का निचोड़ है, उसके इंग्लिश वर्जन भी आपको मिलता है लाइट अप ट्रूथ के नाम पर, थोड़ा इससे क्लासिकल बुक है जिनको थोड़े ऑलरेडी बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है वो अगर चाहे तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक इंटरप्रिटेशन, वो थोड़ा हेवियर होगा जो कॉमन लोग हैं, पर जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ सकते हैं। और स्वामी जी ने वेदों के भी भाष्य किया है, अल्दो सारे वेदों का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए क्योंकि उनका अकाल मृत्यु हो गया, पर जो जितना भी किया है आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, आप जरूर सत्यार्थ प्रकाश और जिसका अंग्रेजी में लाइट ऑफ ट्रूथ हर किसी को पढ़ने की जरूरत है। आप किसी भी बिलीफ सिस्टम को मानते हो, इंटरेस्टिंगली जो चीजें हमें पता नहीं है वो है कि स्वामी जी ने सिर्फ भारत में जो रिलीजियस या सोशल या कल्चरल चीजें था सिर्फ उसी को लाउडली उसको क्रिटिसाइज करना, उसको ठीक करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे दुनिया में जहां जहां भी जिस तरह की भी बिलीफ सिस्टम है, इवन रिलीजियस सिस्टम, वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, इन सबके शास्त्रों में भी जहां जहां उनको सुपरस्टिशन से रिलेटेड या कुछ ऐसी बातें जो लोगों को खराब रास्ते पर ले जाता है उन सबको हाईलाइट किया। वो इसके लिए बहुत गट्स चाहिए। आज भी हम किसी के फेथ के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाते हैं, आपको आप देखते हैं कितना भयंकर रिजल्ट मिलता है। और 100-150 साल पहले तो और भी खतरनाक सिचुएशन था, उसके बावजूद भी उन्होंने ये उनके अंदर वो उन्होंने ये डेयर लिया। और सारे सत्यार्थ प्रकाश में 10 चैप्टर तो है हमारे अपने धर्म के बारे में, क्या जो प्रिविलेंट सोच क्या है और क्या सही है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। और 4 जो चैप्टर है, लास्ट के 4 चैप्टर जो बाकी रिलीजियन है, वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या और कोई छोटे मोटे रिलीजन हो, उन सबको उन्होंने जिसको आप कहते हैं क्रिटिकल स्टडी विदाउट बींग बायस्ड, वो क्रिटिकल स्टडी की है। अगर हमें ओवरऑल दुनिया के सारे रिलीजियस थॉट को क्रिटिकली समझने की कोशिश करना है विदाउट बींग बायस्ड, आपको सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ना चाहिए। आप लोग सारे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझ रखते हैं, मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है, आपको सबको पढ़ना चाहिए। माने न माने जितनों को जो भी आपकी कॉन्शस है दैट्स फाइन, बट पढ़ने से आप देखेंगे आपके लाइफ में कितने चेंजेस आता है। इन्हीं बातों के साथ आज जो और एक विशेष सुंदर दिन है जो कल या परसों हम सेलिब्रेट करेंगे, बहुत सारे लोग 4 मार्च को या कुछ लोग 5 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे, वो है शिवरात्रि। शिवरात्रि, रात्रि तो आप समझते हैं नाइट है, शिव का मतलब होता है मंगल, शुभ। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मतलब अमावस्या के दिन आता है, फाल्गुन मास में आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। ऐसी रात्रि, और ये मोस्टली हमारे ज्यादातर फेस्टिवल या ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल दिन में होते हैं, सिर्फ 2 फेस्टिवल हैं जो रात को होते हैं और अंधेरे में होते हैं, अंधेरी रात में, अमावस्या में, एक दीपावली और एक होता है शिवरात्रि। उसके पीछे रीजनिंग है, आप लाइट से लाइट के और थोड़े ही जाएंगे। आपको जब फील हो कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, कोई डार्कनेस है, तभी आप लाइट की ओर जाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा हेल्दी होने का क्या वैल्यू है। विल टेक एवरी टाइम फॉर ग्रांटेड हेल्थ को जब तक आप बीमार नहीं होते हैं। जब तक आप भूखा परेशान नहीं होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि खाने का क्या वैल्यू है। अगर हमेशा 24 घंटे मुंह में कुछ डलता रहता है तो पता ही नहीं चलेगा खाने का वैल्यू क्या होता है। जैसे कि हमारी आदत है, घर में बैठे रहते हैं, हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसी तरह अंधेरी रात में ही पता लगता है दिन का महत्व। जिस चीज को हम नहीं जानते हैं जब हम उसमें प्रॉब्लम आता है तभी समझ में आता है कि ज्ञान का क्या महत्व है। शिवरात्रि लोग सेलिब्रेट करते हैं। शिव जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को भी अगर आप ठीक से समझ लें तो आपको समझ में आएगा शिव कितने कितने मिस्ट्रीफुल है। जिसको हम शिव कहते हैं मंगलमय, और माइथोलॉजी में पुराणों में जो शिव कैरेक्टर है उसे हम मृत्यु का या विनाश की देवता मानते हैं, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बड़े मजेदार बात देखिए, जो डिस्ट्रक्शन है, विनाश का देवता है, उसका नाम है शिव, मतलब मंगल, शुभ। इसलिए हमारे यहां डिस्ट्रक्शन कभी बुरी नजर से नहीं देखा जाता था, बुरी नजर मतलब गलत तरीके से। जब आप मेन स्ट्रीम में, हम कभी कभी जाते हैं हाई स्कूल्स में, कॉलेज में, बच्चों को बताने भाई ओम का अर्थ क्या है, ईश्वर का क्या काम है, जैसे आप सुनते हैं कि क्रिएटर, केयरटेकर एंड डिस्ट्रॉयर, वो डिस्ट्रॉयर सुनते ही उनको कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब डिस्ट्रक्शन का काम तो एविल का है, डेविल का है, गॉड के साथ आप डिस्ट्रॉयर। हमारे यहां तो ये डिस्ट्रक्शन जो है वो डेविल करता है, बदमाश करते हैं, असुर शैतान का काम है, वो उनकी कंसेप्ट। पर हमारे यहां डिस्ट्रक्शन इज पार्ट ऑफ नेचर, क्रिएशन हो ही नहीं सकता जब तक कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। जब तक फल पके नहीं, गिरे नहीं, उसके बीज में से लाखों दूसरे पेड़ पैदा ही नहीं हो सकते। कोई भी पुराना घर टूटे नहीं तो उसके जगह नया खूबसूरत घर आ ही नहीं सकता। इसलिए मरना, मृत्यु या डिस्ट्रक्शन, विनाश के पीछे वो शुभ या मंगलता जुड़ी हुई होती है। उसे शंकर भी कहते हैं, शुभ करने वाला, अच्छा करने वाला। अभी आपने मंत्र पढ़ा, नमः शंभवाय च मयोभवाय च, और एक नाम होता है भूतनाथ। मतलब आजकल माइथोलॉजी में आपको भूतनाथ के नाम पर शिव के आगे पीछे बहुत सारे घोस्ट और स्पिरिट पकड़ा देते हैं, जबकि ये बड़ा फॉरेन कंसेप्ट है। ये घोस्ट होना, स्पिरिट होना, किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में भूत का मतलब घोस्ट या स्पिरिट, इसका कोई रेफरेंस दूर दूर तक का नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट ही नहीं है, ये बड़ा फॉरेन कंसेप्ट, ये हो ही नहीं सकता। भूत मतलब प्राणी, ये सारे प्राणियों का नाथ वो परमेश्वर है, परमात्मा है, जो शिव है, वही शंकर है, वही रुद्र है, रुलाने वाला, कष्ट देता है। हमारे कर्मों के अनुसार कुछ बुरा होता है, हम रोते हैं, वो ईश्वर की व्यवस्था है, इसीलिए वो रुद्र है क्योंकि रुलाता है। वो शिव है क्योंकि हमारे लिए शुभ सोई सोचता है, वो मंगलकारी है, वो हम सबका नाथ है, स्वामी है। वो जो शिव है, जिस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में जितने भी आप उसके डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आप इसको अगर थोड़े ओपन माइंडेड होकर के देखें, वो सारी चीजें उस परमात्मा की और सोसाइटी को कितना खूबसूरती में डिस्क्राइब करता है। वो त्रिनेत्र है, आप तो दो आंखों से दुनिया में उतना ही देखते हैं जितना आपकी दोनों आंखें दिखा सकते हैं, लिमिटेड है। और वो जो तीसरा नेत्र है, जो ज्ञान का नेत्र, वो सारे संसार को देखने, इसीलिए आप लोग को जो योग के ट्रेडिशन में आप कहते हैं कि तीसरा नेत्र, ये यहां कोई नेत्र नहीं होता है, वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। आप इंटेलेक्चुअली जितना एडवांस्ड होंगे, आपका विजडम जितना बढ़ा हुआ होगा, आपका ज्ञान जितना एनलाइटेंड होगा, उतना आप दुनिया की बारीकी को डीपली समझ सकते हैं। वही है तीसरा नेत्र। लाइफ में जब मुश्किल से आते हैं, आप आंख का नाक से डिसीजन नहीं लेते हैं, देखे हुए चीजों से। और जो भी व्यक्ति, जिसको अंग्रेजी में आप सिक्स सेंस कहते हैं, वो जो अलौकिक ज्ञान है, जो आपकी सबकॉन्शियस में रहता है, जो एनलाइटेंड पावर है, वही त्रिनेत्र है। शिव की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारे जगह आपको मोस्टली साउथ इंडियन जो उसके आइकन से उसमें मिलेगा, अर्धनारीश्वर, मतलब नारी, अर्धम मतलब हाफ, हाफ लेडी है और हाफ जेंट्स है, मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन है। शिव की वो जो पौराणिक कैरेक्टर में और एक पेयर ऑफ अपोजिट्स आपको दिखेगा, वो योगी है पर शादीशुदा है। ये मैसेज है कि आपको योगी बनने के लिए घर छोड़ करके जंगल भागने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थी होकर भी योगी बन सकते हैं। आप अपने आप को उस पुरुष के भाव से मत रखिए, हर पुरुष में आधा स्त्रीत्व है और हर स्त्री में आधा पुरुषत्व है। पुरुषत्व एक गुण है, स्त्रीत्व एक गुण है, जो कोमलता है वो स्त्री का स्त्रीत्व के पाठ है, जो कठोरता है वो पुरुष का गुण है, एक सूर्य है एक चंद्र है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दुनिया चलती है। हमारा शरीर हमारा मन जब स्त्री और पुरुष के मिलावट से बनता है तो हम एक अच्छा बैलेंस्ड इंसान बनते हैं। जब आप प्योरली मेल नेचर वाले बनते तो आप ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जब आप प्योरली स्त्री चरित्र स्त्री क्वालिटी वाले बनते इतने सॉफ्ट के होते हैं कि तो आप किसी काम के नहीं होते हैं। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्त्री और पुरुष, यह है अर्धनारीश्वर, हर वो पुरुष हर वो महिला, आधे पुरुष और आधे महिले के कॉम्बिनेशन से होता है। इसलिए कभी पुरुष होकर स्त्री को कम ना आंकना चाहिए, स्त्री होकर पुरुष को ज्यादा या कम आंकना नहीं चाहिए। हम एक दूसरे को पूरक हैं, सप्लीमेंट करते हैं, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं बनता। सारे पुरुष ना रहे स्त्री यूजलेस है, सारे स्त्री ना रहे पुरुष यूजलेस है, दुनिया चली नहीं सकता। ये उस भाव को बताता है, मंगलमय शिव जो मंगल है वो आपके लाइफ में मंगल तब होता है जब आपका अपना जीवन आधा नारी और आधा पुरुष के कॉम्बिनेशन हो, आपकी फैमिली में वो नारीत्व और पुरुषत्व हो, आपके जीवन में वो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का कॉम्बिनेशन हो। और एक इंटरेस्टिंग बात है, बात करके समाप्त करेंगे। वो जो शिव है उसे हमारे शास्त्रों में कोई भी प्राचीन शास्त्र आप देखेंगे वेदों को छोड़ करके, क्योंकि वेद तो हम रिवील्ड मानते हैं अपौरुषेय है, सब शास्त्रों को लिखने वाले मानते हैं कि ये जो ज्ञान हमें मिला ये ज्ञान हमारा अपना नहीं है, ये तो हमें किसी ने दिया। वो कहता है हमें किसी ने दिया, वो अंतिम में जाकर के वो ईश्वर तक पहुंचते हैं। ये सब ईश्वर के ईश्वर सर्वज्ञ है, पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, सयश सर्वज्ञानम सर्वज्ञानानाम बीजम, समस्त ज्ञान का सीड सोर्स वही है। माइथोलॉजी में पुराण की माइथोलॉजिकल स्टोरीज में उसे आदिगुरु के रूप में कहा कि सारे ज्ञानों का सोर्स वही मंगलमय है, वो परमात्मा शिव है। शिवरात्रि उसी बात को हाईलाइट करता है कि आप जब भी अपने लाइफ में इग्नोरेंस को रिकॉग्नाइज करें, अपनी कमियों को जानें, तो आप साधना करो, परिश्रम करो, वो स्पिरिचुअल साधना करो कि आप अपने इग्नोरेंस को, वो मैटेरियल हो स्पिरिचुअल हो, उसको दूर कर सको। शिवरात्रि वो पर्व है अपने अंदर वो अवेकनेस लाने का, वो जागृति लाने का, वो जागृति आप मेडिटेशन करने का पर्व है ये शिवरात्रि। आप पूरे साल भर 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट करते हैं, शिवरात्रि में पूरे दिन भर आप अपने आप को ईश्वर को सौंपते हैं, अपने माइंड को नियंत्रित करते हैं। गीता का ये बड़ा सुंदर श्लोक है जो ऋग्वेद के मंत्र का छाया है, शैडो है, वो भी अब बताएंगे। यानीशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सानीशा पश्यतो मुने। बाकी लोगों के लिए जो रात है ज्ञानी के लिए वो दिन है। रात का मतलब जो इग्नोरेंस है, डार्कनेस है, जो कुछ दिखता नहीं है, जो यूजलेस लगता है बाकी कमन लोगों के लिए, योगी के लिए उसी में ही लाइट है। और योगी के लिए जो अंधेरा है, जो इसको इग्नोर करता है, वो केयर नहीं करता है, जो मेटेरियल वर्ल्ड है, आम लोगों के लिए वो उसी में वो दिन ढूंढते हैं। ये ऋग्वेद का सुंदर मंत्र है, यो जागारतम ऋच कामयन्ते यो जागारतम सामानियन्ति यो जागारतम अयम सुमाथ तवाहम अस्मि सख्यन्योकः। जो जागता है, ये जागता मैं इसीलिए बोलता हूं, शिवरात्रि में लोग जागरण करते हैं, वो जागरण के फिलोसफिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझिएगा। ऋग्वेद का मंत्र है, जो जागता है अपने लाइफ में, जो विजिलेंट होता है, जो अवेकनेस लाता है अपने लाइफ में, उसी को ऋग्वेद समझ में आता है, वही शाम को डाइजेस्ट कर सकता है। और ईश्वर उसी के सामने आकर बोलता है, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारे कण कण में मैं ही रहता हूं। कण कण में तो हमारे और आपके भी ईश्वर है, पर यो हमें क्यों नहीं बोला, हमें कभी रियलाइज हो नहीं सकता जब तक हमारे अंदर अवेकनेस ना हो, विजिलेंस ना हो। वो जो विजिलेंस लाने का जो स्रोत है वो वही है साधना। वो साधना तो ये शिवरात्रि साधना का पर्व होता है, मेडिटेशन का पर्व होता है, अपने आप को रियलाइज करने की कोशिश करने का पर्व है। और एक चीज छोटी सी कह के विराम करेंगे, ये शिवरात्रि के साथ अभी आपने फर्स्ट हाफ में स्वामी जी के जीवन के बारे में सुना, उनके काम के बारे में सुना। स्वामी जी के साथ भी शिवरात्रि का एक कनेक्शन है। इसी शिवरात्रि के दिन वो 12 साल की उम्र में, वो भी एक ब्राह्मण और वैदिक ब्राह्मण परिवार के संतान थे, सामवेदी ब्राह्मण गुजरात के, तो उनके घर में भी बाकी लोगों की तरह शिवरात्रि के दिन मंदिर जाते थे, आधी रात तक जागना पड़ता था और उसके बाद प्रसाद लेकर आते थे जो भी। तो उनका मूल नाम मूल शंकर, जब वो उस दिन रात को भी गए थे, परिवार वालों को पूछा क्यों जागते हो, क्योंकि आधी रात के बाद ईश्वर का दर्शन होगा, शिव के दर्शन होगा। हम तो ट्रेडिशनली रिचुअली करते हैं, पर उस छोटे बच्चे को लगा कि मुझे एक्चुअली शायद शिव का दर्शन होगा। वो जागता रहा, बाकी फैमिली मेंबर सो चुके थे 9-10-11 बजे तक, 12-1 बजे उठेंगे, पूजा करेंगे, प्रसाद लेकर घर जाएंगे। वो जागता रहा देखने के लिए कि कब मुझे ईश्वर दर्शन होगा। ईश्वर दर्शन तो नहीं हुए, शिवलिंग पर देखा जब सो गए, अंधेरा है तो चूहान कूद रहे हैं, भोगों को खा रहे हैं। वो वेट करता रहा, छोटे बच्चे का दिमाग है कि ईश्वर अभी तक तो जागे नहीं, ये चूहों की कितना हिम्मत है कि ईश्वर भगवान पर चढ़ जाते हैं, उनके प्रसादों को खा जाते हैं, शायद भगवान आएगा रोकेगा, मत करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह होने पर मां बाप से उसने बहस किया कि कहां है ये, तो कोई पत्थर है, ईश्वर होता तो चूहों को तो रोकता, रोक नहीं सकता। समझ में नहीं आया, घर छोड़ के भाग गए देवियों सज्जनों। 20-25 साल तक हिमालय से विंध्याचल तक घूम करके जो ज्ञान पाया सच्चे ईश्वर की खोज में, पर वो शिवरात्रि का रात ही थी जो स्वामी जी के अंदर ये भाव लाया कि मुझे असली शिव ढूंढना है, ये मंदिर में मूर्ति बना के पूजने वाले ईश्वर नहीं, मुझे वो असली ईश्वर की खोज करना है। इसलिए शिवरात्रि आर्य समाज के लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। आप सबको शिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और स्वामी दयानंद जी के जयंती पर भी आपको बधाई। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दें, हम जीवन में आगे बढ़ें, इसी भाव के साथ।